दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी दिनकर जी अयांच की बाँह कसकर पकड़ते हुए बोले, राधे इसे यहाँ से लेकर जा, वरना अभी महाभारत हो जाएगी। राधे आरवी की ओर आने लगा। तभी आरवी बोली, हम खुद ही जा रहे हैं, हमें वैसे भी महाभारत करने का शौक नहीं, न ही रावण देखने का। तभी राधे अपना सिर खुजाते हुए बोला, पर रावण तो महाभारत में था ही नहीं। आरवी वहां से जाते जाते बोली, दुर्योधन तो था ना, वो कौन सा कम था? यहाँ के रावण से अच्छा तो रामायण का रावण था, कम से कम सीता को इतना तंग तो नहीं करता था। हाँ तो तुम कौन सी सीता हो? अयांश गुस्से में आवाज देते हुए बोला। तो राम तो आप भी नहीं हैं, आरवी सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली। खुद को आज की सीता समझती हो ना, तो भूल जाओ कोई राम आएगा अब। राम समझो या रावण, जो हूं मैं ही हूं। जरूरत भी नहीं है मुझे कोई आए और ले जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। तब की सीता और आज की सीता में फर्क है मिस्टर मेहरा। तब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, यहां हम ही लंका लगा देंगे। इतना कह आरवी वहां से चली गई। जाते जाते अयांश के अंदर गुस्सा भर गया। अयांश अपना हाथ छुड़ाकर इतनी हिम्मत देख अयांश के पीछे जाने लगा कि तभी दिनकर जी बोले, बात लंच डिनर की भी थी, पर यहां तो नाश्ता भी साथ ना हुआ, गुस्सा हावी हो गया अंशु बेटा। ये सुनते ही अयांश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर दिनकर जी की ओर देखा, जो अपना खाना खा रहे थे। अयांश भी वापस आकर बैठ गया और उसने अपनी प्लेट में और करेले लिए। बहुत सारे खाऊंगा, कहते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। ये देख दिनकर जी मंद मंद मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद आरवी अपने कमरे में टहल रही थी और सोच रही थी कि अपना प्लान कैसे शुरू करे। तभी उसकी नज़र फ्रूट्स पर पड़ी। बिन खाए तो दिमाग भी ना चल रहा आरवी, और मिस्टर मेहरा को परेशान करना है, पर शुरू कैसे और कहाँ से करूँ, अपना सिर खुजाते हुए। यहाँ तो ये खुद ही मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत सारा, ये एप्पल वगैरह भी कुछ खाया हो तो अच्छे लगते हैं। तभी राधे कमरे में आया और टेबल पर चाइनीज खाना लाकर रख दिया। आरवी फट से टेबल की ओर आते हुए बोली, ये सब? राधे बॉक्स ओपन करते हुए बोला, आपके लिए ही है, मैगी पास्ता पिज्ज़ा, आपको यही पसंद है ना, देखिए कितना मसाला और तीखा खाना लग रहा है, स्पाइसी कहते हैं इसको, आरवी टेबल के पास बैठते हुए बोली। अब खा लो, कह राधे वहां से चला गया। इतना यमी खाना, ऐसा लग रहा है बरसों बाद दर्शन हुए हैं, मुंह में देखकर ही पानी आ रहा है, होठों पर जीभ फेरते हुए, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। वैसे मैंने तो पूछा ही नहीं किसने मंगवाया है, पक्का मिस्टर मेहरा के दादाजी ने भिजवाया है, एक वही तो जिनको स्वाद का पता है, वरना कोई तो करेले पर ही निर्भर है, हेल्थ वो क्या जाने, अच्छा खाना कितनी खुशी देता है, खाना ठूसने और खाने में फर्क होता है, बाद में थैंक यू बोल दूंगी उनको। चल आरवी शुरू हो जाता है, पास्ता सिखाती हूँ, कह आरवी ने चम्मच डाली और पास्ता मुंह में रखा। तभी उसकी आंखें फैल गई, वो मुंह से सीसी करने लगी। जैसे ही पास रखे पानी के जग से गिलास में पानी डालने को हुई, तभी अयांश ने आकर फट से जग उठा लिया। पानी दीजिए, आरवी मुंह जलने की वजह से सीसी करती नीचे से उठते हुए बोली। पानी क्यों, तुम्हें तो तीखा पसंद है ना, क्या हुआ, तीखी जुबान को तीखा पास्ता पसंद नहीं आया? पानी का जग हाथ से उठाते हुए अयांश बोला। आरवी अयांश से पानी लेने की कोशिश करते हुए बोली, दीजिए ना, तीखा पसंद है पर इतना नहीं, बहुत मिर्ची है इसमें, मिर्ची लग रही है, पानी दीजिए हमें, स्पाइसी बोलते हैं, यमी टेस्टी हेल्दी, मन को खुशी मिले स्वाद, ऐसा ही कुछ कह रही थी ना तुम, पर तुम्हारी हालत देख तो लग रहा है खुशी तो आसपास भी नहीं, वैसे ये आंखों से बह रहे आंसू खुशी के आंसू हैं क्या? ज्यादा तीखे के वजह से आंखों में पानी बहने लगा था। इतनी खुशी तो मुझे मेरे करेले खाकर भी नहीं होती जितनी तुम्हें तीखा मसालेदार खाकर हुई है, राइट? चू चू चू, मुस्कुराते हुए अफसोस जताते हुए। ये देख आरवी ने अपने होठों को मुंह के अंदर लिया और जलन कम हो इसलिए मुंह फुला लिया। एक बार फिर आरवी ने पानी लेने की कोशिश की, पर अयांश ने ना दिया, तो आरवी उसे घूरते हुए बाथरूम की ओर भाग गई। वापस आई तो अयांश अभी भी वहां मौजूद था, जो मुस्कुरा रहा था। आरवी उसकी ओर आते हुए बोली, मिल गई खुशी? नहीं, ठंडक, जितनी तुम मेरे अंदर आग लगाती हो ना, तुम्हें तड़पाकर ही चैन आता है, वैसे आग तो तुम्हारे अंदर भी लगी है, मिर्ची ने मिर्ची जो खा ली, वैसे वो कहावत लोहे को लोहा काटता है यहां भी सेट ना होती, मिर्ची को मिर्ची रास ना आई, लो बुझा लो अपने अंदर कलेजे पर लगी आग को। इतना कह अयांश ने पानी का जग आरवी की ओर बढ़ाया। आरवी उसे घूरते हुए जग लेने लगी कि मुस्कुराते हुए अयांश ने फिर उसे अपने पीछे कर लिया। ये देख आरवी बोली, डूब मरिए इसी पानी में, और खुद टेबल से एप्पल उठाकर खाने लगी। अयांश ने जग टेबल पर रखा और फुल एटीट्यूड के साथ बोला, मुझे ना तुम्हारे जैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा एक्शन लेता हूँ जिससे तुम्हारी बोलती बंद, अभी भी वक्त है, समझ जाओ मुझसे उलझना महंगा पड़ सकता है, और हाँ सिर्फ पास्ता ज्यादा तीखा था, बाकी खाना नहीं है, खा सकती हो, मैंने नहीं दादू ने ऑर्डर किया था, उनको बड़ा तरस आता है तुम पर, बस मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, मुस्कुराते हुए। एंजॉय, टेबल पर रखे खाने की ओर हाथ करते हुए। इतना कह अयांश वहां से चला गया। उसके जाते ही आरवी ने हाथ में पकड़ा एप्पल रखा और पहले एक गिलास जल्दी से पानी पिया और फिर बाकी खाने की ओर देख बोली, सच में सही है क्या? टेस्ट करके देख लूं? कह आरवी ने मैगी टेस्ट की और उसके होठों पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। अयांश अपने रूम में आया तो देखा आरवी उसके कमरे में थी। उसे देख अयांश हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेड पर बैठते हुए आरवी बोली, ये कैसा सवाल है मिस्टर मेहरा? शादी हुई है हमारी और मैं तो मिसेज मेहरा हूँ। आपको अपने हक याद है तो मेरे हक का क्या? मिसेज मेहरा होने के नाते मिस्टर मेहरा की हर चीज मेरी है, ये रूम, ये बेड, राइट? भौहें उठाते हुए ये सुन अयांश मुस्कुरा दिया और अपनी अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? वही जो करना चाहिए या होना चाहिए। अब आप तो कर चुके हैं आपने जो किया है, मैं भी तो वही कर रही हूँ, बेड से उठते हुए आरवी बोली। तभी अयांश ने अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें फैल गईं। व्हाट द हेल, कहते हुए वो आरवी की ओर मुड़ा। हेल, वो यहाँ कैसे होगी? आप भी ना, वैसे स्वर्ग भी नहीं, हेल ही है, सही बोला, अयांश से कहे खुद से बड़बड़ाते हुए आरवी बोली। तभी अयांश उसकी ओर आया, तुम्हारे कपड़े यहाँ? हाँ, तो जब मैं यहाँ हूँ तो अपने कपड़े भी यहीं रखूंगी ना। निकलो तुम भी और निकालो अपने कपड़े यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी से छेड़छाड़ करने की, यूज करने की, मेरी परमिशन बिना टच करने की? अयांश आरवी की बांह पर हाथ रखते हुए बोला। आरवी ने अयांश की बांह झटक दी। यही सवाल मैं करूं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ से छेड़छाड़ करने की? आपने तो सब कुछ कर डाला बिना मेरी मर्जी के। और निकलो तुम, निकालो कपड़े, इतना ही सहन नहीं हो रहा तो निकाल दीजिए ना। ना इस घर में रहूंगी, ना ही आपके कमरे में आऊंगी, ना ही आपकी अलमारी टच करूंगी, अयांश की ओर एकटक देखते हुए। ओह, तो ये सब यहाँ से जाने के लिए क्या प्लान है? बट फेल हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, घर से तो तुम नहीं जाओगी। रही बात मेरे कमरे से तो वो अभी कर दूंगा बाहर, कहते हुए अयांश आरवी को पकड़ने लगा कि आरवी फट से बेड पर चढ़ गई। मैं भी नहीं जाने वाली, आर यू क्रेजी? चप्पल लेकर मेरे बेड पर चढ़ गई, नीचे उतरो, अयांश आरवी पर चिल्लाया। ओह, साफ सफाई का इतना ध्यान? रास नहीं आ रहा, गंदा हो रहा है, देख दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हो, उसका क्या? आरवी बेड पर से चिल्लाते हुए बोली। देखो तुम ये सही नहीं कर रही, उतरो नीचे, निकलो बाहर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, अयांश आरवी को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला।
आरवी बेड पर इधर उधर होते हुए बोली, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता है, मैं नहीं जाने वाली, पहले आप जाइए मेरी लाइफ से बाहर। ये सुन अयांश खुद भी बेड पर चढ़ गया, बट अपने जूते उतार कर, अभी बताता हूँ। तभी आरवी दूसरी साइड उछाल मार उतर गई। क्या बताएंगे? अयांश भी नीचे उतरते हुए बोला। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा अपने कमरे से बाहर करके, आरवी कमरे ने भागते हुए बोली। इतना ही बाहर बाहर का शौक है तो परमानेंट ही बाहर कर दो, ये ख्वाहिश तुम्हारी मेरे जीते जी पूरी ना होगी, तो मर जाइए, वैसे भी आप एक मरेंगे 100 लोग जिएंगे चैन से, तुम्हारी तो, कहते हुए अयांश ने भागकर फट से कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। आरवी ने अयांश को धक्का देना चाहा तो दोनों एक साथ बेड पर जा गिरे। आरवी अयांश के ऊपर थी। आरवी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अयांश की ओर देखा जो उसकी ओर ही देख रहा था। आरवी अयांश के ऊपर से उठने लगी तो अयांश ने अपनी बाह आरवी की पीठ पर कस दी और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। नीचे हॉल में बैठे दिनकर जी बोले, ये शोर बंद कैसे हो गया? राधे उनकी ओर आते हुए बोला, लगता है दोनों चूहा बिल्ली जैसे लड़ते लड़ते थक गए। ये सुन दिनकर जी के साथ राधे भी हंस पड़ा। अयांश और आरवी की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। जैसे ही आरवी ने कहा छोड़िए मुझे, तो अयांश ने फट से आरवी को बेड पर पलट दिया और खुद आरवी के ऊपर होते हुए बोला, छोड़कर ही आऊंगा। आरवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी अयांश बेड से उठ गया और आरवी को खड़ा कर उसकी बांह पकड़ खींचकर अपने कमरे से उसके खुद के कमरे में ले आया। तुम तो आ गई, अब तुम्हारे कपड़े? इतना कहे अयांश वापस अपने कमरे में आया, अलमारी से आरवी के कपड़े निकाल ले जाने लगा। तब तक आरवी वापस वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, माना कि आप जो चाहते हैं वही आपकी लाइफ में एंटर करता है, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई चीज, पर मेरे पास दो पैर हैं, मैं फिर आ सकती हूँ? भौहें उठाते हुए, तो मैं फिर छोड़ सकता हूँ? कहते हुए कपड़ों समेत अयांश आरवी की ओर बढ़ने लगा। वो फिर भाग खड़ी हुई और साथ अयांश को भी भगा लिया। इस बार वो अयांश की पकड़ में न आई, कभी कमरे से बाहर तो कभी वापस कमरे के अंदर। थक हार कर अयांश ने आरवी के कपड़े फेंक दिए और खुद ही गुस्से से चिढ़कर तुम्हें देख लूंगा कहकर कमरे से चला गया। यही हूँ, शौक से देख लेना, मुझसे कहीं देख भी ना पाएंगे जो आपको नानी याद दिला दे, अयांश को आवाज़ देते हुए खुद ही ताली बजाते हुए बोली। वाह, मज़ा आ गया, इतनी जॉगिंग तो इन्होंने आज तक ना की होगी जितनी मैंने फ़िलहाल करवा दी, हंसते हुए। अयांश नीचे पहुंचा तो दिनकर जी बोले, कहाँ जा रहे हो? अयांश उनकी ओर देखते हुए बाहर की ओर बढ़ते हुए बोला, बाहर, घर पर रहूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। राधे, पर अयांश बाबा, लंच? अयांश रुकते हुए बोला, लंच तो तब खाऊंगा जब बचूंगा, उससे पहले वो लड़की मुझे खा जाएगी, मैं आता हूँ। और हाँ, तुम उस लड़की के कपड़े और वो मेरे आने से पहले मेरे कमरे से बाहर होने चाहिए, नहीं तो तुम्हें बाहर कर दूंगा। इतना कह अयांश घर से चला गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं मालिक, राधे ने परेशान होते हुए बोला। तुमने नहीं पर उसने तो किया है शादी, शादी करके फंस गया बेचारा, दिनकर जी हंसते हुए बोले। अयांश के कमरे में अयांश की तस्वीर की ओर देख हार्वी बोली, आपको परेशान करने का पहला प्लान सक्सेस हुआ, वेल डन हार्वी। आज उनका चेहरा देखने लायक था। दूसरों को तंग करने वाले के होश उड़ गए और भाग भी गए। जाइए जाइए मिस्टर मेहरा, अभी तो घर छुड़ाया है, नेक्स्ट प्लान में आपके ही कमरे से आपको बाहर कर दूंगी। पर सोच हार्वी, इनको खुद के पास आने से भी रोकना है, क्योंकि एक बार नहीं पकड़ कस जाती है, मैं तो हिल भी ना पाती, तो इनको दूर रखने का भी कुछ सोचना होगा। वैसे प्लान नंबर टू एक तलवार दो शिकार वाला काम करेगा, जल्द आइएगा। जबरदस्ती बने पतिदेव, आपकी जबरदस्ती बनाई पत्नी आपका इंतजार कर रही है और तंग करना है ना, ताकि छुटकारा मिले आपसे, हंसते हुए। अयांश अपने कैबिन में बैठा था और आरवी के बारे में सोच रहा था। जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, सीधी ही होती तो आज इतनी नफरत थोड़ी होती मुझे। पर ये मत सोचना तुम कि मैं चला आया तो तुम जीत गई। आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरे कमरे में घुसने की गलती, इसका सबक तो तुम्हें देकर रहूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे कमरे की चौखट पर भी पैर रखने से पहले 10 बार सोचो। बी रेडी मिसेज मेहरा, योर डेविल हस्बैंड इज कमिंग, गुस्से से। तभी उसके टेबल का फोन रिंग किया। अयांश फोन उठाता है और दूजे ही पल आगे की बात सुनकर कह देता है, भेज दो वापस, मुझे नहीं मिलना। इतना क्या अयांश ने फोन रखा ही कि तभी आरती दी और पीयूष जीजू जबरदस्ती कैबिन में चले आए। गार्ड उनको रोकने पीछे पीछे आते हैं। अयांश दोनों को देख चेयर से उठा और गार्ड से बोला, कहा था ना मुझे किसी से नहीं मिलना। सर, रोका था, मना किया था, पर ये माने नहीं, चले आए जबरदस्ती अंदर। गार्ड अपनी ओर अयांश को घूरता देख नजरें झुकाते हुए बोला। तभी आरती आगे आते हुए बोली, पर हमें मिलना है अयांश, हमें मिलना है। हाँ, और बहुत जरूरी है अयांश हमारा मिलना, पीयूष जीजू ने भी कहा। तभी अयांश ने वहां से गार्ड को जाने को कहा और खुद खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों मिलना है, सक्षम कहाँ है अयांश, आरती ने अयांश की ओर आते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं तो किसे पता होगा। अयांश, हम 2 दिन से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम हो कि मिलना ही नहीं चाहते। क्या हो गया अयांश ऐसा, आखिरी बार तुम ही मिले थे ना सक्षम से घर पर, फिर घर से वो और गार्ड दोनों गायब। हम सब मैरिज रिजॉर्ट में सक्षम आरवी की शादी की तैयारियों में लगे थे, 5 दिन बाद शादी थी, आज के अकॉर्डिंग 3 दिन बाद। उस रात मैसेज आया कि सक्षम काम से बाहर गया है, जरूरी काम, अपनी शादी के बीच से कैसे जा सकता है वो, और तुम कैसे भेज सकते हो उसे अयांश, तुमने कॉल ना उठाया और उसका फोन बंद, घर से गार्ड भी गायब, न सक्षम का पता चला, न गार्ड का और ना ही आरवी का। आरती दी ने नम आंखों से कहा, हाँ, और अगली सुबह पता चलता है अयांश मेहरा ने आरवी चतुर्वेदी के साथ शादी कर ली। शादी तो सक्षम और आरवी की होने वाली थी, फिर तुम्हारी और आरवी की कैसे, न सक्षम है यहाँ और ना ही इस बारे में किसी को खबर, पीयूष चीजू ने आगे आते हुए बोला। अब तो लग गई ना खबर, और सच यही है, मैंने और आरवी ने शादी कर ली है और आज ये सब जानते हैं, अयांश ने जवाब दिया। ये जवाब नहीं अयांश, जो सच सुनना चाहते हो वो बताओ। एक पल लगा सच में सक्षम काम से बाहर गया है, पर अगले दिन तुम्हारी शादी, वो भी अचानक। बताओ अयांश, तुम्हें पता है सब, मेरा भाई कहाँ है, बोलो अयांश, बोलो, जवाब दो, आरती ने नम आंखों से चिल्लाते हुए कहा। मैं जवाब दे चुका हूँ, आप दोनों जाइए यहाँ से, अयांश ने बिना उनकी ओर देखे कहा। तभी आरती अयांश के पास गई और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, कहाँ है सक्षम, अयांश उनकी ओर देखते हुए बोला, मर गया। ये सुनते ही आरती दी के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। पीयूष जीजू ने फट से आकर उनको संभाला, क्या बोल रहे हो अयांश, वही जो आप सुन रहे हो, मर गया, वो मेरे लिए और मुझे उसका कुछ पता नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से, ना तो मेरा उससे कोई रिश्ता, ना ही उसके रिश्तेदारों से, अयांश ने टेबल की ओर जाते हुए बोला। तुम्हें सच पता चल गया क्या, पीयूष जीजू बोले। ये सुनते ही अयांश के कदम रुक गए। उसे कहा था मत कर ऐसा, मत कर, आरती दी रोते हुए बोली। तभी अयांश फट से उनकी ओर आया, आप दोनों भी जानते थे, भौहें से कोड़ते हुए, क्रमशः